नमस्कार।
आज हम एक बहुत बड़े जाल की परतें खोलने वाले हैं, एक ऐसा जाल जो धर्म और आध्यात्म के नाम पर फैलाया गया।
और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत है वो है पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तक ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है।
जी, और हम खास तौर पर इसके 9वें अध्याय पाप प्रपंच पर ध्यान देंगे।
और ये अध्याय कमाल का है। देखिए, पूज्य गुरुदेव हमें तीन तरह के ईश्वर से मिलवाते हैं।
तीन तरह के?
हाँ, लेकिन उनमें से एक जो तीसरा वाला है वो नकली है, एक धोखेबाज है।
अच्छा,
तो आज का हमारा मकसद उसी धोखेबाज ईश्वर को पहचानना है
और ये समझना है कि वो हमारी सोच को कैसे एक तरह से बीमार करता है।
बिल्कुल। तो इस पड़ताल को शुरू करने के लिए ये जानना जरूरी होगा कि वो दो असली ईश्वर कौन हैं।
जी, ताकि हम तुलना कर सके।
हाँ, जिनकी तुलना में हमें तीसरे को परखना है। तो पहला ईश्वर कौन है?
पहला ईश्वर है आद्य बीज शक्ति।
आद्य बीज शक्ति?
हाँ, आप इसे सृष्टि का ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकती हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम? दिलचस्प।
ये वो मूल ऊर्जा है, वो कॉस्मिक लॉ है जिससे सब कुछ बना है और चल रहा है, जैसे आग और बिजली।
अच्छा,
इनके नियम पक्के हैं, सबके लिए बराबर है। आप नियम मानेंगे तो फायदा होगा, तोड़ेंगे तो नुकसान।
मतलब कोई सिफारिश, कोई पक्षपात नहीं, कर्म का सिद्धांत इसी का नियम है ना?
बिल्कुल। ये एक वैज्ञानिक ईश्वर है जो किसी की प्रार्थना से नहीं बल्कि अपने ही नियमों से चलता है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है।
ठीक है, ये समझ आया। और दूसरा ईश्वर?
दूसरा ईश्वर योग साधना का ईश्वर है। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर है।
हमारे अंदर?
जी, पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। भक्त इसे अपनी मानसिक शक्तियों से, अपनी श्रद्धा और एकाग्रता से खुद बनाता है।
तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, एक मानसिक जिम जैसा हुआ?
हाँ, कह सकते हैं
कि आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी के रैप्स लगाते हैं, आपकी आंतरिक शक्ति, आपका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होता जाता है।
आपने बिल्कुल सही समझा। ये ईश्वर आपके ही मन का एक रिफ्लेक्शन है।
अच्छा।
जैसे एक गेंद को आप जितनी जोर से दीवार पर मारती हैं, वो उतनी ही तेजी से वापस आती है।
सही बात है।
वैसे ही इस कल्पित ईश्वर के प्रति भेजी गई अच्छी भावनाएं, श्रद्धा और विश्वास कई गुना होकर हमारे ही मन को मजबूत करती हैं। ये आत्म सुधार का एक शक्तिशाली तरीका है।
ठीक है, तो पहला ईश्वर प्रकृति का नियम हो गया, दूसरा मन की शक्ति। ये दोनों तो समझ में आते हैं और काफी लॉजिकल भी लगते हैं। लेकिन अब आते हैं उस तीसरे पर, पाप का प्रपंच। ये नाम ही अपने आप में बड़ा अजीब और नकारात्मक है। आखिर ये है क्या भला, ये कहाँ से आया?
यहीं से असल खेल शुरू होता है।
अच्छा।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये तीसरा ईश्वर इंसानों ने बनाया है।
इंसानों ने?
हाँ, खास तौर पर चालाक, मतलबी और स्वार्थी लोगों ने, अपने फायदे के लिए।
मतलब ये कोई दैवीय चीज नहीं है?
ने के लिए खड़ा किया गया है।
बाप रे।
और इस नकली ईश्वर के मंदिर को चार मजबूत खंभों पर, यानी चार सिद्धांतों पर टिकाया गया है।
चार सिद्धांत?
हाँ।
तो चलिए इन खंभों को एक एक करके तोड़ते हैं।
जी,
देखते हैं कि ये पूरा ढांचा कैसे काम करता है। पहला सिद्धांत क्या है?
पहला सिद्धांत ये प्रचार करता है कि मनुष्यों को अमीर गरीब ईश्वर बनाता है।
ओहो।
यानी आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है वो ईश्वर की मर्जी है। अगर आप गरीब हैं तो ये ईश्वर की इच्छा है, इसे चुपचाप स्वीकार कर लो।
लेकिन ये तो हमारे वैदिक सिद्धांत अपरिग्रह के बिल्कुल खिलाफ है।
बिल्कुल।
अपरिग्रह का मतलब तो यही है कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा मत करो, और वो प्रसिद्ध दोहा भी तो यही कहता है।
कौन सा?
पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम।
वाह, ये दोहा तो आज के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब CSR जैसा लगता है।
हाँ, है ना?
मतलब ये कोई नई बात नहीं है, हमारी संस्कृति में ये विचार हमेशा से था कि अतिरिक्त धन समाज का है और उसे वापस समाज में लगाना चाहिए।
तो फिर इस तीसरे ईश्वर के सिद्धांत ने इस सोच को पलटा कैसे? इसका मकसद क्या था?
इसका मकसद था शोषण को धार्मिक मान्यता देना।
शोषण को?
हाँ, स्वार्थी अमीरों ने इस सिद्धांत को इसलिए गढ़ा ताकि गरीब लोग अपनी हालत के लिए अमीरों से सवाल ना करें, विद्रोह ना करें।
अच्छा।
अगर कोई गरीब है तो वो सोचेगा ये तो भगवान की मर्जी है, मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे, और वो चुपचाप अन्याय सहता रहेगा।
और इसी से फिर वो जाति वाली बात भी जोड़ दी गई होगी।
बिल्कुल, कि ईश्वर ने ही कुछ जातियों को ऊंचा और कुछ को नीचा बुलाया है ताकि सामाजिक असमानता पर भी धर्म की मोहर लग जाए।
ये तो बहुत बहुत गहरी साजिश है। मतलब लोगों के संघर्ष करने की इच्छा को ही खत्म कर दो।
हाँ, ये कहकर कि ये सब तो ऊपर वाले का प्लान है।
अच्छा, तो ये जो दूसरा सिद्धांत है वो भी क्या इसी तरह की चालाकी पर आधारित है?
हाँ, ये दूसरी साजिश उन लोगों ने रची जो बुद्धिमान तो थे पर कर्महीन थे।
कर्महीन?
हाँ,
मतलब मेहनत से जी चुराते थे।
जी।
सिद्धांत ये था कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए व्यक्ति को जितना दान दक्षिणा दिया जाएगा ईश्वर उतना ही प्रसन्न होगा।
लेकिन इससे समाज पर क्या असर पड़ा होगा?
बहुत बुरा असर पड़ा। इसने समाज से असली ज्ञान और चरित्र के सम्मान को खत्म कर दिया।
कैसे?
देखिए, पहले सम्मान उनका होता था जो त्यागी, सदाचारी और ज्ञानी होते थे, चाहे वे किसी भी कुल में जन्मे हों। लेकिन इस सिद्धांत के बाद सम्मान और धन सिर्फ जन्म के आधार पर मिलने लगा,
बिना किसी योग्यता या पुरुषार्थ के।
हाँ,
पर लोगों ने इस बात पर यकीन कैसे कर लिया? ये तो एक तरह का, क्या कहते हैं, आध्यात्मिक भ्रष्टाचार हुआ।
उन्होंने लोगों को एक बड़ा सस्ता सौदा ऑफर किया।
सस्ता सौदा?
उन्होंने कहा, ईश्वर के नाम पर जो हमें देगा उसके सारे पाप माफ हो जाएंगे।
अच्छा, अब सोचिए, पाप करने वाले को लगता था कि वो पैसे देकर दंड से बच जाएगा, और दक्षिणा लेने वाले को लगता था कि वो आशीर्वाद देकर महान बन गया।
पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए कोई खास शब्द इस्तेमाल किया है।
हाँ, वो इसे अंधे और कोढ़ी की जोड़ी कहते हैं।
अंधे और कोढ़ी की जोड़ी
दोनों ही धोखे में थे। एक को बिना मेहनत के पैसा चाहिए था, दूसरे को बिना प्रायश्चित के पाप से छुटकारा।
तो ये जो तीसरा ईश्वर है, ये पहले ईश्वर यानी कॉस्मिक लॉ के बिल्कुल उल्टा है।
बिल्कुल।
जहाँ पहला ईश्वर कर्म के फल की गारंटी देता है, वहीं ये तीसरा ईश्वर बिना कर्म के फल का झूठा वादा करता है।
हाँ,
है ना?
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पहला ईश्वर कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तीसरा ईश्वर कहता है तुम कुछ भी करो, बस हमें दान दे दो, सब ठीक हो जाएगा।
ये तो कर्म के सिद्धांत का सीधा सीधा अपमान है।
है?
अब मुझे उस तीसरे सिद्धांत के बारे में उत्सुकता हो रही है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो उन लोगों के लिए है जो जीवन में असफल हो जाते हैं।
हाँ, ये सिद्धांत उन आलसी और अयोग्य लोगों ने बनाया जो मेहनत करना नहीं चाहते थे पर सफलता की उम्मीद रखते थे। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा, उसके पास दो रास्ते हैं।
क्या?
या तो वो अपनी गलती माने और मेहनत करे, या फिर एक कहानी गढ़ ले।
और कहानी गढ़ना ज्यादा आसान है।
बिल्कुल। और सबसे आसान कहानी है, मैं तो संत आदमी हूँ, मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना।
मतलब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए धर्म का छोला ओढ़ लो।
एकदम। ये सिद्धांत था, दुनिया से हमें क्या मतलब, हमें तो ईश्वर भजन करना है।
अच्छा।
ऐसे लोग साधु संत का वेश बनाकर, माला तिलक लगाकर अपनी अकर्मण्यता, अपनी कामचोरी को छिपाने लगे।
और वो दुनिया को कैसा दिखाते थे?
वो दुनिया को नश्वर और पाप से भरा हुआ बताते, ताकि लोग अपने पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों को छोड़कर बस भजन में लग जाएं।
लेकिन ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि लोग इतनी आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से भागकर भजन करने के विचार को अपना लेंगे।
बहुत अच्छा सवाल है।
उस समय के समाज में ऐसा क्या चल रहा था कि ये आइडिया इतना आकर्षक बन गया?
देखिए, जब समाज में निराशा होती है, जब लोगों को लगता है कि मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, तब ऐसे शॉर्टकट वाले विचार बहुत आकर्षक लगते हैं।
पलायन का,
एस्केपिज्म का,
सबसे आसान रास्ता।
जी, जबकि गीता का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कर्तव्य का पालन करना ही ईश्वर का भजन है।
सही बात है। अर्जुन को कृष्ण ने युद्ध छोड़कर भजन करने को तो नहीं कहा था?
नहीं कहा था, बल्कि अपना कर्तव्य निभाने को कहा। लेकिन इन लोगों ने कर्तव्य छोड़ने को ही धर्म बना दिया।
तो इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो तो काफी डरावनी है। समाज पर इसका कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा? इस तीसरे ईश्वर को पूज्य गुरुदेव आखिर में क्या कहते हैं?
सब मिलाकर इस तीसरे दर्जे के ईश्वर को स्वार्थ साधन का आडंबर कहा जा सकता है।
स्वार्थ साधन का आडंबर?
ये एक ऐसा मुखौटा है जिसके पीछे सिर्फ स्वार्थ छिपा है, और इसके असर को समझाने के लिए समाज शास्त्रियों और पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी है।
वो क्या है?
अफीम की गोली।
अफीम की गोली? ये तो बहुत गहरी उपमा है, इसे थोड़ा और खोलिए, इसका मतलब क्या है?
जैसे अफीम का नशा करने के बाद व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता। वो अपनी बुरी से बुरी हालत में भी एक झूठे सुख में पड़ा रहता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है।
हाँ।
उसी तरह ये विचारधारा लोगों की सोचने समझने की शक्ति को, उनकी स्वतंत्र बुद्धि को सुला देती है।
सुला देती है।
लोग अन्याय को ईश्वर की मर्जी मानकर सहने लगते हैं, गरीबी में भी संतोष करने लगते हैं, और अपने हक के लिए लड़ना छोड़ देते हैं।
मतलब ये लोगों को निष्क्रिय, पैसिव बना देती है।
बिल्कुल। और ये अफीम की गोली सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है।
अच्छा।
आज भी जब कोई बड़ा स्कैम होता है और लोग कहते हैं सब भगवान की मर्जी है, या जब कोई व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठाता क्योंकि पिछले जन्म के कर्म होंगे, तो असल में वो इसी अफीम के नशे में है।
मतलब ये विचारधारा संघर्ष करने की इच्छा को ही खत्म कर देती है।
हाँ, पूज्य गुरुदेव इसे मानसिक महामारी कहते हैं, एक ऐसा वायरस जो व्यक्ति की आत्मा को, उसके पुरुषार्थ को और समाज की प्रगति को बीमार कर देता है।
तो मतलब गुरुदेव एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसे हम धर्म समझकर कर रहे हैं वो शायद सिर्फ एक सुविधाजनक बहाना हो सकता है,
हो सकता है
अपनी असफलता छिपाने का, मेहनत से जी चुराने का, या समाज में हो रहे अन्याय को चुपचाप सहने का। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
एकदम, ये आत्मनिरीक्षण का विषय है। असली आध्यात्मिकता हमें मजबूत, जिम्मेदार और जागरूक बनाती है। वो हमें पहले ईश्वर यानी प्रकृति के नियमों को समझने और उनके अनुसार चलने के लिए प्रेरित करती है।
सही।
वो हमें दूसरे ईश्वर यानी अपनी मानसिक शक्तियों को जगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि ये तीसरा बनावटी ईश्वर हमें कमजोर, निष्क्रिय और अंधविश्वासी बनाता है।
ये एक बहुत ही साफ और जरूरी फर्क है जिसे समझना आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
बिल्कुल।
पूज्य गुरुदेव के विचार हमें हमेशा जगाते हैं कि हम धर्म के असली सार को समझे, न कि उसके विकृत स्वरूप को।
इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में उठता है।
बताइए।
पूज्य गुरुदेव ने जिन सिद्धांतों का वर्णन किया वे एक खास समय और समाज के संदर्भ में थे।
हाँ, ये तो है।
आज के आधुनिक युग में ये तीसरा ईश्वर या ये अफीम की गोली किन नए रूपों में, किन नए पैकेट में हमारे सामने आ रही है?
बहुत जरूरी सवाल है।
आज की कौन सी विचारधाराएं, मान्यताएं या ट्रेंड्स हैं जो लोगों को उनके कर्तव्यों से भटकाकर उन्हें निष्क्रिय बना रहे हैं और किसी न किसी तरह के शोषण को सही ठहरा रहे हैं?
ये सवाल ये हमें अपने समय की चुनौतियों को पहचानने में मदद कर सकता है।